તારીખ 23/12/1997 શ્રી મદ્રાસ ચંદ્ર પત્રાંક 128 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું કોઈમ્બતુરમાં વચન. મૂળ કેસેટમાં અવાજ ખરાબ છે.
શ્રી મદ્રાસ ચંદ્ર વચનામૃત પત્રાંક 128 ચાલતા હે. खंबात के मुमुक्षु भाइयों पर पत्र लिखा है. लिखने का आशय वो है कि जिसको जन्म मरण से छूटना है, बहुभ्रमण से मुक्त होना है, उसको मुक्त होने का उपाय क्या है तो पता नहीं है. इसलिए इस विषय में अकुलाहट होती है, बहुत उलझन में आता है जी. सवाल उतना है कि इस जीव की योग्यता ऐसी होती है कि ये भवभ्रमण मुझे नहीं चाहिए. भवभ्रमण में बहुत दुख है, वो बात उसको महसूस होती है. विचार होना एक बात है, महसूस होना दूसरी बात है. महसूस होना ऐसी कोई योग्यता है, इस जीव को इस प्रकार के विचार चलते हैं. अंतरात्मा में से ये विचार आते हैं और वो विचार उनको कैसे कैसे चलते हैं उसको कहते हैं परिभ्रमण की चिंतना. कृपालु देव ने आगे भी एक पत्र लिखा है 86 नंबर का, और पीछे भी एक पत्र लिखा है 195 नंबर का. बीच में ये पत्र 128 नंबर का चलता है. 86 नंबर और 195 नंबर में एक ही बात है कि जिस जीव को मुक्त होने का मार्ग की इच्छा उत्पन्न हुई हो, उसको धर्म साधन करने के सभी विकल्प छोड़ करके सबसे प्रथम यही बात विचार में आनी चाहिए या महसूस होनी चाहिए कि मैं परिभ्रमण कर रहा हूँ और मुझे जैसे कैसे भी इससे मुक्त होना है. ऐसा उनके चित्त में, उनके अभिप्राय में, उनके विचार में वो बात आनी चाहिए. ऐसे हुए बिना किसी को मार्ग सूझता नहीं, उपाय सूझता नहीं, और मार्ग किस दिशा में है उसका भी पता, अल्प भी पता चलता नहीं. बहुभाग जीव इस क्रम में आए बिना, ऐसे चिंतना में आए बिना अपने अपने संप्रदाय में जो भी क्रियाएं चलती है, जो भी रिवाज रूढ़ि, जो भी साधन माने गए हैं उसी का अनुसरण करते हैं और इसका कोई पारमार्थिक फल यानी आत्मकल्याण वाला फल कोई आता नहीं है. इसलिए कृपाणु देव ने निष्कारण करुणा से इस बात की प्रसिद्धि की है कि सब विकल्प को छोड़ करके पहले ये होना जरूरी है। और वास्तविकता भी इस मार्ग की यही है कि पहले ऐसा ही होता है वही मोक्ष मार्ग तक पहुंचता है, जिसको नहीं होता है वो मोक्ष मार्ग तक पहुंचता भी नहीं है। वो चिंतना कैसी होती है इसका वर्णन चार पैराग्राफ में यहाँ पर कृपालु देव ने किया है। सुबह पहला पैराग्राफ चला था, संक्षेप में फिर से ले लें। अंतर्ज्ञान से स्मरण करते हुए ऐसा कोई काल जानने में नहीं आता या स्मरण में भी नहीं आता कि जिस काल में या जिस समय में इस जीव ने, मैंने हमारे जीव ने परिभ्रमण नहीं किया हो। अनंत काल से जीव परिभ्रमण करता आया है, भाव भावांतर करता, दुखी होता 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 वर्तमान में अभी मनुष्य भाव में है हमारा जीव। पूर्व के काल में काफी जन्म मरण, अनंत जन्म मरण किए हैं और इसका कारण संकल्प विकल्प है, कई प्रकार के संकल्प विकल्प किए हैं। पर इस कारण से वो अपने आत्म शांति को भूला हुआ है। आत्म शांति के विषय में थोड़ा स्पष्टीकरण चला था कि धर्म साधन करने वाले को मानसिक शांति मिलती है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ख्रिस्ती हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, अपने अपने धर्मस्थान में जाते हैं, कुछ न कुछ क्रियाएं होती हैं जो मंद कषाय रूप होती हैं और कषाय की मंदता होने से मानसिक शांति भी होती है। संसार के कार्यों में मानसिक अशांति होती है और धर्मस्थान में मानसिक शांति होती है। अशांति की बराबरी में शांति आती है, जीव संतुष्ट हो जाता है कि चलो बार बार इधर आना चाहिए तो थोड़ी शांति मिलती रहेगी। फिर क्रिश्चियन चर्च में संडे को संडे जाएगा और मुसलमान मस्जिद में जुम्मे को जुम्मे जाएगा, जुम्मे के जुम्मे मैंने शुक्रवार, उसको जुम्मा का वार बोलते हैं। सबको यही अनुभव होता है कि यहाँ आते हैं तो ठीक लगता है, इसलिए वो रूटीन हो जाता है और वो चलता रहता है। लेकिन इसमें आत्म शांति नहीं है। संसार के कार्यों के वशात और धर्म साधन के वशात आत्म शांति में जीव भूला हुआ है। यहां कृपालु देव का कहने का अभिप्राय यह है कि जिसको आत्म शांति चाहिए इसके लिए ये बात है, जीव आत्म शांति के विषय में भूला हुआ है, कुछ संकल्प करके, कुछ विकल्प करके, कुछ भी करके संसार के बहुभाग जीवों ने तो पंचेंद्रिय के विषय में मानसिक शांति का अनुभव किया, कुछ लोगों ने धार्मिक प्रक्रिया में मानसिक शांति का अनुभव किया, पंचेंद्रिय के विषय में जो शांति होती है उसमें मजा कहते हैं कि मजा आता है उधर, एंटरटेनमेंट। और धर्मस्थान में भी एंटरटेनमेंट जैसे ही बात हो जाती है फिर, क्योंकि वो भी एक मानसिक शांति का तरीका है और कुछ नहीं है। जिनेंद्र देव का मार्ग कहो या ज्ञानी पुरुष का मार्ग कहो, कृपालुदेव ज्ञानी पुरुष का मार्ग बोलते हैं इसी कारण से कि जिन मार्ग के नाम से तो आज अनेक संप्रदाय चलते हैं, हमारे जैन के नाम से भी, उसमें ज्ञानी थोड़े अलग हो जा पड़ते हैं, उस संप्रदाय में शामिल नहीं होते। ज्ञानी संप्रदाय में शामिल नहीं होते क्योंकि मानसिक शांति में कषाय की मंदता है, वो चारित्रमोह की मंदता है। और ज्ञानी के मार्ग में या जिनेंद्र के मार्ग में सबसे पहले दर्शन मोह की मंदता का उपाय है, इसलिए वो मार्ग थोड़ा अलग पड़ता है। दर्शन मोह मंद हुए बिना दर्शन मोह का अभाव होकर के सम्यक दर्शन नहीं होता, और चारित्र मोह इसमें मंद होता है वो सम्यक प्रकार से होता है। जबकि दर्शन मोह वैसा का वैसा रहे और चारित्र मोह को जो मंद करता है उसका चारित्र मोह कुछ काल तक टेम्पररी मंद होता है, फिर तीव्र हो जाता है, क्योंकि मोह की जड़ दर्शन मोह में है, चारित्र मोह में नहीं है। मोह का एक पेड़ है, उसमें मूल में दर्शन मोह है, बाकी जो पत्ते हैं फूल फल है वो चारित्र मोह में है। मूल वैसा का वैसा रहता है, पत्ते कोई काटते हैं तो फिर नए पत्ते आ जाते हैं। अपने गुजराती में पांगरे से हम कहिए छे, वो मोह का पेड़ पनपता है। क्या होता है हिंदी में पनपते हैं ऐसे कहते हैं, क्योंकि मूल में तो वो मोह का सिंचन चालू रहता है, तो थोड़े पत्ते कोई काटते हैं चारित्र मोह के त्याग करके या कुछ भी करके, फिर वही पत्ते लग जाते हैं। इसलिए ये सही उपाय नहीं है और ये सही क्रम भी नहीं है। ये परिभ्रमण की चिंतना में सबसे पहले व्यवस्थित योजना पूर्वक दर्शन मोह में घाव पड़ता है, दर्शन मोह पर घाव पड़ता है। कृपालु देव ने ये योजनाबद्ध बात किया है, सारा 254 नंबर का पत्र तो इसी पर ही लिखा गया है। बिल्कुल, तो ये 128 में जो मुमुक्षुता प्राप्त हुई वहां से वो 254 चालू होता है, वहां से 254 चालू होता है। और स्वरूप का निर्णय होवे, पहचान होवे, जिसमें स्वरूप सन्मुक्ता होती है वहां तक का क्रम लिया है। फिर स्वरूप सन्मुक्ता के बाद तो अल्पकाल में स्वानुभूति प्राप्त होती है, और स्वानुभूति की उपलब्धि होने से मोक्ष मार्ग में प्रवेश होकर के मोक्ष तक की प्रक्रिया स्वयं चल जाती है। क्यों? कि मोह की जड़ कट जाती है, वहाँ जो पत्ते हरे हैं कुछ काल तक रहेंगे फिर अपने आप सूख जाएंगे, सुखाना पड़ेगा नहीं, सूख जाएंगे। ये जिनेंद्र देव का मार्ग है, लेकिन लोग जानते नहीं है। जिन मार्ग के हिसाब से का नाम से दूसरी दूसरी बातें चलती है, ये क्रम कहीं नहीं है। इसलिए ज्ञानी ने इस क्रम का बोध किया, इसलिए ज्ञानी का मार्ग ऐसा बताया। और कृपालु देव ने अनेक जगह इसी ग्रंथ में मुमुक्षु को ज्ञानी के मार्ग पर चलने का की शिक्षा दी है और इसी बात पर वजन दिया है। इसका मतलब यह है कि तुम अपनी मति से मनमानी रीति से धर्म साधन मत करना। जैसे ज्ञानी कहते हैं वैसे ही करना है, इसलिए ज्ञानी का मार्ग पर चलना। और ये जरूरी भी है, बहुत जरूरी है। जैसे कोई गंभीर शरीर रोग उत्पन्न होता है और मरीज को हॉस्पिटलाइज किया जाता है, तब उसको डॉक्टर की सूचना में, डॉक्टर के परहेज में ही कंपलसरी रहना पड़ता है। अगर उसको छूटना है, रोग मिटाना है, तो फुल्ली सरेंडर होना पड़ता है। तो ये भवरोग मिटाने के लिए भी इसके तजज्ञ है, वो ज्ञानी है, उसने अपना भवरोग मिटाया है और उसकी सूचना में सरेंडर होके चलना पड़ेगा। वो जैसा कहे वैसा करना पड़ेगा, अपनी मनमानी नहीं चलेगी। अपनी मनमानी रीति से तो अनंत काल से धर्म साधन करता आया है। यम नियम संयम आप कियो, पुनि त्याग विराग अथाग लियो, बहुत किया। तो इससे तो कोई होने वाला है ही नहीं। हो सकता है समझी होगी, लेकिन अमलीकरण नहीं किया तो समझे समझ क्या काम की। समझ दो प्रकार की है, एक स्वलक्षी और एक परलक्षी। जो आत्मलक्षी समझ है उसमें आत्मा अनुसरण करने लगता है, यानी जो समझ है उसको अपने परिणमन में लागू करता है, अप्लाई करता है। परलक्षी समझ वाला समझ में ही संतुष्ट होता है और उसका अमलीकरण में नहीं आता है। तो समझी होगी अनंत काल में परलक्षी ज्ञान में, स्वलक्षी ज्ञान में समझी समझ आई, अमलीकरण चालू होगा। जैसे हम लोग इस मार्ग के ज्ञानी के कहे हुए क्रम की चर्चा करते हैं, लेकिन जो मुमुक्षु परलक्षी ज्ञान में समझ करता है वो अमलीकरण में नहीं आता, और स्वलक्षी ज्ञान में आता है वो अमलीकरण में आता है। तो दोनों में बहुत फर्क हो गया। कहलाने में तो दोनों मुमुक्षु ही कहलाता है, एक ही शास्त्र को पढ़ता है, एक ही सत्संग को अटेंड करता है। कि भाई आप भी मुमुक्षु हैं, मैं भी मुमुक्षु हूँ, क्या फर्क हो गया? तो बहुत फर्क है। को परलक्षी वाला क्या मानता कि ये भी मेरा जैसा है, ये भी मेरा जैसा है, ये भी मेरा जैसा है, ऐसा नहीं है। जो स्वलक्ष वाला है वो परलक्ष वाला से कहीं भी बेहतर है, बहुत बेहतर है वो। ये बात ख्याल में लेनी चाहिए। क्यों? कि वो अमलीकरण में आया, वो क्रम में प्रवेश कर दिया, तो उसके हाथ में सारी ज्ञानी के मार्ग की लाइन्स हाथ में आ जाती है। ये चिंतना होने से क्या करना उसकी सूझ होती है, सूझ आती है। इसके पहले कोई सूझ नहीं होती, तो लिखा है 195 में। तो ये जो अंतर की सूझ है ये अपने आप मार्क करती है, अंदर में ही मार्क करने लगती है, और जिसको सूझ नहीं है उसको अंधेरे में खड़ा है, फिर कुछ भी करता है वो जंपिंग इन द डार्क, फायरिंग इन द डार्क, वो अंधेरे में कुछ भी करता है उसको पता नहीं मैं क्या करता हूँ, कहाँ जाऊँगा, किधर जाऊँगा, कोई पता नहीं है, करते रहता है, अंधेरे में खड़ा है। इतना बड़ा अंतर है, मुमुक्षु मुमुक्षु में बड़ा अंतर पड़ जाता है, विरुद्ध भाव है, लेकिन क्या करता है वो बराबर ही करता है, ये भी मुमुक्षु है मैं भी मुमुक्षु, ये भी पढ़ता है सुनता है मैं भी पढ़ता है सुनता हूँ, वो भी मंदिर जाता है मैं भी मंदिर जाता हूँ, उनको बाहर की क्रिया तो बराबर लगती है ना, तो मंदिर में बहुत फर्क है, योग्यता में बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है, वो अंतर भी समझना चाहिए। वास्तव में तो जो स्वलक्ष्य में नहीं आता है उसको कैसे स्वलक्ष्य में आना, वो उसके पास से समझना चाहिए। किसके पास से? कि जो स्वलक्ष्य में आकर के वेदना में आया उसके पास से वो बात उसके समझनी चाहिए, कि आपको क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे आगे। हम लोग कोशिश करते आ नहीं पाते, क्या बात है, इतनी स्वयं को गरज आनी चाहिए। तभी तो स्वलक्ष्य होने का मौका है, वरना ऐसे ही चलेगा कि हम सब साथ में सत्संग करते हैं उसमें क्या हो गया है। दूसरी बात वो है कि परलक्ष्य वाले को दूसरे के दोष बहुत जल्दी से नजर आते हैं, उसको गुण ग्राहीपना कम होता है या नहीं के बराबर होता है। अब दूसरा जो मुमुक्षु है वो कोई सर्वगुण संपन्न तो होते नहीं, सर्वगुण संपन्न तो परमात्मा जिनेन्द्र देव है, ज्ञानी भी नहीं, तो दोष नजर आते हैं, उसकी मुख्यता हो जाती है, और अपने दोष तो दिखते नहीं, क्या इससे भी ज्यादा हमारे में भरे हैं, वो तो दिखता नहीं, तो ये गड़बड़ होती है। ये भी कई प्रकार की जो विटंबनाएं होती है उसका इलाज क्या, कि अंडर स्ट्रिक्ट मेडिकल सुपरविजन जो हॉस्पिटलाइज होते हैं उस तरह से सत्संग में रहना, और अपना दोष देखते जाना, कहते जाना, बताते जाना, और दूसरों को बतलाने के लिए विनती भी करते जाना कि मेरे कोई दोष हो तो बता दीजिए, मेरे को निकालना है। तभी तो स्वलक्ष्य में आएगा, ये परिणामों की चर्चा इस कारण से है कि सारे दिन में आपने अपने लक्ष्य से स्वलक्ष्य से कितनी बात देखी, अपने परिणामन में क्या क्या देखा, और दूसरा भी अपना दोस्त दिखाता है तो अपने को सुहाता है कि नहीं सुहाता है वो भी पता चलेगा। तो इस तरह से जो ज्ञानी का मार्ग है उसमें दर्शन को की ताकत तोड़ने की एक योजना है, वो योजना अनुसार अगर कोई चलता है तो उसका दर्शन मोह एक दिन अवश्य टूटता है और उस सम्यक दर्शन को प्राप्त करके मोक्ष मार्ग में चलेगा, आ जाएगा। तो इसका सबसे प्रथम चरण जो है यानी प्रथम आचरण करने लायक कोई बात है तो ये परिभ्रमण की चिंतना है। उसमें वो आत्म शांति के लिए प्रयास करता है, क्योंकि आत्म शांति के विषय में ही भूला है। क्या लिखा है कि इसके द्वारा समाधि को नहीं भूला हो। समाधि माने आत्म शांति। हमारे निहाल चंद जी सुगानी जी के विषय में उसका एक जीवंत उदाहरण है कि उनको सत्संग प्राप्त नहीं था, इसलिए इस विषय में क्या होना क्या नहीं होना कुछ पता नहीं था। संप्रदाय के अनुसार सब क्रियाएं करते रहते थे, लगन से करते थे, इसलिए बहुत करते थे। शास्त्र भी सारे दिन पढ़ते रहते थे। कभी किसी ने योग क्रिया, ये जो बताते हैं ना ध्यान शिविर में, वो भी बहुत किया, घंटों तक किया। योग की क्रिया में भी पड़े थे, शास्त्र स्वाध्याय में भी बहुत लगे थे, और जिनेन्द्र पूजा में भी बहुत लगे रहते थे। छः छः घंटा, कितना, छः छः घंटा। लेकिन कोई बात योजनाबद्ध नहीं थी, फिर भी हुनर अच्छा था, हुनर अच्छा था, तो आत्म शांति की खोज उनकी चालू रही। धर्म साधन करते हुए मंद कषाय में कभी संतुष्ट नहीं हुए, इसलिए वो समाधि के विषय में भूले नहीं। क्या टू दी पॉइंट, क्या बात है कि जीव समाधि के विषय में भूला है, मैंने आत्म शांति के विषय में भूला है। उनको आत्म शांति नहीं मिलती थी। आत्म शांति की एक पिपासा थी, और पिपासा का ऐसा स्वभाव है, वो तृषा है ना, तीव्र तृषा को पिपासा कहते हैं। उसका ऐसा स्वभाव है कि जितना काल जाए उतनी पिपासा बढ़ती जाए, और ये एक बहुत अच्छा लक्षण है इस मार्ग में। वरना क्या होता है कि वरना ये होता है कि मुमुक्षु को भी ये पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते वो ठंडे हो जाते हैं और संतुष्ट हो जाते हैं कि हमने इतने साल तक ऐसा ऐसा स्वाध्याय किया, और अब हमको बहुत गुस्सा नहीं आता है, हमको थोड़ी सरलता भी आ गई है, हमको ये भी हुआ है, हम निवृत्ति भी ले रहे हैं, हम ऐसा भी नहीं करते, वैसा पहला करते थे, अभी ऐसा नहीं करते हैं, सब कुछ आ जाता है संतुष्ट होने में, गिनती करने में लग जाता है। ये गिनती करना वेरी बैड साइन, बहुत बुरा लक्षण है वो। ये दर्शन मोह को बढ़ाने वाला परिणाम है। बहुत बुरा इसलिए है कि ये दर्शन मोह को बढ़ाने वाला परिणाम है। ऐसा हो जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको पिपासा बढ़ती गई, पिपासा बढ़ती गई। जैसे कोई पानी नहीं मिलने से तृषावान मर जाता है, उसका प्राण छूट जाता है, ये तृषा की चरम सीमा है, वैसा उनका भी हुआ कि आत्म शांति की पिपासा में उनको लगा मेरा जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। अगर मुझे आत्म शांति नहीं मिली तो ये संकल्प विकल्प की अशांति है। भले धर्म के विषय में संकल्प विकल्प चलते थे, वो अशांति उतनी थी कि मेरा जिंदा रहना मुश्किल था। उनके खुद के शब्द में वो बात है कि या तो विकल्प फट करके निर्विकल्पता हो जाए शांति आत्मा की, या तो देह छूट जाए। दो में से एक होने वाला था, या तो विकल्प फट करके निर्विकल्पता हो जाए या तो देह छूट करके प्राण छूट जाए, देह छूट जाए प्राण छूटने से। तीसरा होने वाला नहीं था। इतने हद तक आत्म शांति की चाहत आई तो कुदरत ने व्यवस्था बिठाई और ज्ञानी पुरुष का योग हो गया, सत्संग मिल गया, प्रत्यक्ष योग मिला और वो फॉरेन सोनगढ़ चले आए। और एक ही दिन में बोध को प्राप्त कर लिया। कृपालु देव ने 751 नंबर के पत्र में आत्मसिद्धि में जो तीन प्रकार के संकेत कहे हैं, वो तीनों प्रकार का संकेत एक दिन में प्राप्त किया। देखो, सुना बहुत आवश्यक है, और वो वहां राजस्थान में नहीं था। आत्मधर्म जो वहां से निकलता है वो दैव वशात कहो, भाग्यवशात कहो, उनको भेजा गया, दिया गया और वो सोनगढ़ चले आए। एक ही दिन में प्रत्यक्ष ज्ञानी का परिचय किया, पहचान किया, एक ही दिन में स्वरूप की पहचान किया और वही दिन में निर्विकल्प सम्यक दर्शन को भी प्राप्त किया। तीन संकेत एक दिन में कर लिया। क्यों? कि आत्म शांति की जो तृषा थी वो चरम सीमा को प्राप्त हुई थी। अपने पत्र में जो बात चल रही है वो टू दी पॉइंट वो बात है कि जीव धर्म साधन करते हुए या नहीं करते हुए समाधि मैंने आत्म शांति को भूला हुआ है। इसलिए सभी मुमुक्षुओं को ये लक्षण चाहिए। मुझे मेरी आत्म शांति नहीं मिली है, मुझे मेरी आत्म शांति नहीं मिली है, कुछ भी हुआ है लेकिन आत्म शांति चाहिए, कुछ भी हुआ है मेरे को कोई गिनना नहीं है। क्या जो कुछ हुआ है मुमुक्षु की भूमिका में है वो गिनेगा ही नहीं, आत्म शांति चाहिए मुझे। सभी को ये, अगर ये चाहत नहीं रही तो आत्म शांति के लिए प्रयास बंद हो जाएगा, प्रयास ही नहीं होगा, फिर वो रूटीन में आ जाएगा। चलो रोज स्वाध्याय करो, सत्संग करो, पढ़ लो, सुन लो, ये कर लो, वो कर लो, तो होता ही है संप्रदाय में, ऐसा यहां हो जाएगा। वहां संप्रदाय में होता है, अपन बिना संप्रदाय में गए, इस संप्रदाय में आ गए। इसलिए ये शब्द जो कृपालु देव ने रखे हैं काफी अनुभव से, अनुभव की गहराई से वो बात आई है कि वो आत्म शांति को नहीं भूला हो ऐसा कोई काल नहीं गया, निरंतर यह स्मरण में रहा करता है, वो बात भूली नहीं जाती, उसका स्मरण ही रहा करता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की, और परिभ्रमण किया इसके फल में, इसका पश्चाताप, दोष के पश्चाताप के बिना पवित्रता नहीं आती। अनंत काल से जीव दोषीत है, उसको सबसे पहले उसका पश्चाताप हुए बिना पवित्रता की दिशा में एक कदम भी वो आगे बढ़ सकता नहीं है। तो ये परिभ्रमण की चिंतना में ये बात होती है। और वो महावैराग्य को देता है, ये स्मरण है, वो महावैराग्य को देता है। मैंने बहुत उदासीनता आती है, जीव को नुकसान करने वाले परिणामों में अनेक प्रकार के परिणाम हैं, उसमें अपेक्षा वृत्ति मुख्य है। क्या है? ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। कम से कम आपने मेरे सामने देखा नहीं, वो भी एक अपेक्षा है। आपने मुझे ये पूछा नहीं, ये भी एक अपेक्षा है। यहां से लेकर के कोई गिनती नहीं कर सके, ऐसी अपेक्षा वृत्ति होती है जीव को। ये अपेक्षा वृत्ति एक ऐसी अग्नि है जो जीव को जलाती है, और जैसे 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 अपेक्षित चीज मिलती है, वो अग्नि में घी डालने के बराबर होती है। उसको कभी शांति नहीं मिलती। ये चिंतना में आने से अपेक्षा वृत्ति खलास खत्म होती है। देखो, दर्शन मोह का अनुभाग तो टूटता है ही, साथ साथ उदासीनता के कारण से अपेक्षा वृत्ति मर जाती है, उदासीनता उतनी आती है। उदासीनता और अपेक्षा वृत्ति आपस में प्रतिपक्ष में है, विरुद्ध में है। तृष्णा इससे ज्यादा है, वो तो बहुत अपेक्षा वृत्ति बढ़ जाने से उसको तृष्णा कहते हैं। या तो छोटी मोटी अपेक्षा भी नहीं होनी चाहिए। देखो, मैं सरल हूं, ये बात सरलता वालों की नहीं होती, वही असरलता है। और दूसरे से सरलता की अपेक्षा रखना, इससे ज्यादा ज्यादा असरलता वाली बात है, वो तो बहुत असरलता वाली बात है, वो तो सरलता वाली कोई बात नहीं। सरलता अलग चीज है, अपने को तो सरलता ऐसी होनी चाहिए कि मैं दूसरों से क्यों अपेक्षा कुछ रखूं, क्यों रखूं मैं, मेरे को नहीं रखनी चाहिए। एक बात। दूसरा कि उदासीनता जिसको होती है उसको अपेक्षा होती ही नहीं, वो तो चिंता में डूबा हुआ है कि मेरे परिभ्रमण का क्या, मेरे परिभ्रमण का क्या, ये मेरा दर्द कैसे मिटे, भव भ्रमण का दर्द, भव रोग मेरा कैसे मिटे, उसकी चिंता में वो पड़ा है। उनको अपेक्षा वृत्ति नहीं आती, उदास 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 हो जाता है। क्या हो जाता है? बहुत उदास हो जाता है। यहां तक खाने में पीने में भी उनको कहीं रस नहीं आता। जो हर हमेशा का रूटीन है खाना पीना, और हर हमेशा का रूटीन है रस लेने का, क्या खाना पीने का भी है और रस लेने का भी यही रूटीन है। डेली रूटीन की जो चीज है उसमें से उदासीन हो जाता है। उदासीन होने से जो अपेक्षा वृत्ति इस लाइन में आने के लिए अवरोधक थी, ये ऑब्स्टेकल्स दूर हो गया, अवरोध मिटा, तो मार्ग में आने में सरलता हुई, मार्ग में आने में सरलता हुई उसको। ये चिंतना में कई प्रकार के पड़खे हैं जो अपने आप खड़े होते हैं वैराग्य के कारण से। ये उसको बोलते हैं कि इस क्रम में होने वाले आनुषंगिक परिणाम हैं, यानी दूसरे दूसरे कोऑर्डिनेशन होने लगते हैं इस परिणाम के साथ साथ। चिंतना वैराग्य को जन्म देता है, वैराग्य अपेक्षा वृत्ति को उड़ाता है, ये सब कोऑर्डिनेशन खड़ा हो जाता है और अवरोध मिटता है। इसलिए पहले ही भव भ्रमण के विषय में और इनके कारण रूप अपराध के विषय में पश्चाताप होता है। भविष्य में ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसी चिंता होती है, वेदना आती है, और इसके नाश होने के उपाय के लिए ये बहुत छटपटाता है, तरसता है, ऐसी एक परिस्थिति पैदा होती है। हाँ, वो भ्रांति है, वो भ्रांति ढीली हो जाती है। अपेक्षा तो सुख बुद्धि के कारण से है। जितनी भी अपेक्षाएं हैं इसके पीछे अभिप्राय सुख बुद्धि का है और आधार बुद्धि का भी है, भोक्ता बुद्धि का भी है, क्योंकि सुख भी भोगना है ना, सुख भी भोगना है, तो ये भोक्ता बुद्धि होती है, उसको कर्ता बुद्धि भी होती है, ये सब गड़बड़ साथ में होती ही है। तो ये उदासीनता आने से ये सब जो विपरीत अभिप्राय है, बुद्धि मैंने अभिप्राय, सब ढीले पड़ते हैं। ये नींव में जो काम होता है ये बहुत महत्वपूर्ण काम होता है। जिसको परिभ्रमण की चिंतना और वेदना हुई, इसका मतलब यह है कि उसको परिभ्रमण नहीं चाहिए। तो अभिप्राय की दृष्टि से सोचे तो उसका संसार परिभ्रमण का अभिप्राय भी जाने वाला हो गया, और अभिप्राय की दृष्टि से मुक्त होने का अभिप्राय हुआ वहां। एक बहुत अभिप्राय विषयक चेंज हो गया है। सभी संसारियों का संसार बढ़ाने का भोगने का अभिप्राय है मोक्ष विरुद्ध, और इसी अभिप्राय से वो धर्म साधन करता है, उसका फल में उसको संसारी संसार मिलता है। ये अभिप्राय की फेर बदली होना सबसे पहले जरूरी है, और वो नींव में ये अभिप्राय बदलता है, इसलिए इसके फल में निर्वाण पद आएगा। अभिप्राय बदले बिना परिणाम बदलने का, योग्यता बदलने का कोई अवसर आता नहीं है। आग्रह में अपेक्षा तीव्र होती है तो आग्रह होता है, जब अपेक्षा तीव्र होती है तो ये अपेक्षित चीज मिलनी ही चाहिए, नहीं मिले तो और छटपटाहट होती है, तूफान खड़ा होता है, कषाय तीव्र हो जाता है, आग्रह में कषाय तीव्र हो जाता है, तो ये अपेक्षा और तीव्र हो गई, तारतम्यता बढ़ गई, अपेक्षा में तारतम्यता बढ़ गई। चारों पैराग्राफ के अंत में वो बात लिखी है कृपालु देव ने। इसका मतलब ये है कि परिभ्रमण की चिंतना ऐसे ऐसे प्रकार की चलती है, और वैराग्य अनिवार्य रूप से होता ही है। वो तो लौकिक चिंता में भी यही हालत होती है, कितना भी अपने भाने वाले अच्छा भोजन पर बैठे हो, खाते हो, और इनकम टैक्स की रेड आ जाए, क्या हो जाएगा? खाने का रस वैराग्य में परिवर्तित हो जाएगा, रस हो जाएगा, इनकम टैक्स के रेड की सामना करने में चला जाएगा। क्यों? एक चिंता खड़ी हो गई। ये तो एक कषाय है, इनकम टैक्स की रेड की चिंता होना भी एक कषाय है। वो दूसरे कषाय को मारता है, खाने में जो रस आता था वो भी कषाय था। एक कषाय भी दूसरा कषाय को मारता है तो कषाय के अभाव करने वाला उपाय कषाय को नहीं मारे ऐसा कैसे बनेगा? वो तो मारे ही मारे, इसमें क्या है? तो इसका उपाय वही है। ये तो कषाय परिवर्तित होता है दूसरे विषय में, यहाँ तो एक कषाय स्वभाव में जाने की बात है। इसलिए ये चिंता से तो वैराग्य आएगा आएगा और आएगा ही, और ये वैराग्य आया यही चिंतना की यथार्थता को सूचित करता है। अगर वैराग्य नहीं आया तो उसने कोई चिंतना आई भी नहीं है, ये समझ लेना। इसका साथ साथ नाप करने का लक्षण है, इसलिए चारों में वो बात लिया है कृपालु देव ने। दूसरा पैराग्राफ कल के स्वाध्याय में लेंगे। यहाँ तक करते हैं।